नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड सरकार ने ऊर्जा और पारदर्शिता के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए भूतापीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी। शासन ने राज्य के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 334 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति दी। कल से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए शासन प्रशासन तैयार। यात्रियों की सुविधा के लिए 27 जुलाई तक रेलवे हर दिन 5 मेला स्पेशल रेलगाड़ी चलाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 127 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी, अगले 2 दिनों में भी विभिन्न स्थानों पर वर्षा का अनुमान। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने ऊर्जा और पारदर्शिता के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए भूतापीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन, हीटिंग कूलिंग, जल शुद्धिकरण और सामुदायिक विकास के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि विधवा और वृद्धावस्था पेंशन अब बच्चों के बालिग होने के बाद भी नियमित रूप से जारी रहेगी। खनिज क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली 2025 और जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। लोक निर्माण विभाग के पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया जाएगा, जबकि विजिलेंस विभाग में 20 नए पद सृजित किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब स्थापित का निर्णय भी लिया, जिससे टैक्स मामलों की तकनीकी जांच सशक्त होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की सूचीबद्ध 7 कंपनियों को आईटी सेवाओं की आपूर्ति के लिए राज्य में सूचीबद्ध किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित व्यय समिति की बैठक में राज्य के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 334 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में पौड़ी जिले के गणिया गांव और देवार गांव में एनसीसी अकादमी के निर्माण के लिए लगभग 76 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। टिहरी जिले के मुनिकीरेती स्थित राम झूला पुल की मजबूती और सुरक्षा कार्यों के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। देहरादून के पुलिस लाइन रेस कोर्स में टाइप 2 श्रेणी के 3 ब्लॉकों में कुल 360 आवासों के निर्माण के लिए लगभग 156 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वहीं हरिद्वार जेल परिसर में आवासों के निर्माण के लिए 21 करोड़ रुपए तथा देहरादून जेल में 60 आवासों के लिए 21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्य सचिव के निर्देश दिए हैं कि सभी अनुमोदित कार्य तय समय सीमा और वित्तीय अनुशासन के साथ पूरे किए जाएं। श्रावण मास की पवित्र कांवड़ यात्रा कल से शुरू हो रही है। यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचने की संभावना है, इसलिए मेले के सुचारू संचालन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं। आज अपराह्न 4 बजे से मेला समाप्ति तक जिले में 16 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 37 जोनल मजिस्ट्रेट और 124 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो 2 पाली में काम करेंगे। हरिद्वार नगर क्षेत्र की जिम्मेदारी नगर मजिस्ट्रेट को और उपमंडलों की जिम्मेदारी संबंधित उप जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। कांवड़ मेला नियंत्रण कक्ष की स्थापना CCR में की गई है, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया और आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत को सौंपी गई है। नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे संचालित करने के लिए 12 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बीच कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार जिले के सभी विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र 14 जुलाई से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मार्ग बंद होने और ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से विद्यार्थियों को आने जाने में असुविधा हो सकती है, इसलिए 10 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार 23 जुलाई तक चलने वाले देश के सबसे बड़े कांवड़ मेले में लगभग 7 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर कांवड़ मेले के दौरान 11 से 27 जुलाई तक रेलवे हर दिन 5 मेला स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। दिल्ली से हरिद्वार के लिए सुबह 3:05 पर और शाम 4:25 पर रेलगाड़ी चलेंगी, जो शामली, सहारनपुर, रुड़की होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगी। मुरादाबाद से लक्सर के लिए सुबह 4:15 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। दिल्ली शाहदरा से ऋषिकेश के लिए सुबह 4:20 और आलमनगर से ऋषिकेश के लिए दोपहर 12:05 पर विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएंगी। वापसी में सभी ट्रेनें देर रात या सुबह चलेंगी।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 127 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। इसमें बद्रीनाथ धाम के लिए 64 करोड़ और केदारनाथ धाम के लिए लगभग 63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में देहरादून में हुई बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल और वित्त अधिकारी मनीष उप्रेती ने बजट प्रस्तुति दी। बैठक में बताया गया कि अब तक दोनों धामों में कुल 24,78,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने से गाढ़ गदेरे उफान पर हैं, जबकि भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क मार्ग आवाजाही के लिए बाधित हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अब भी ओजरी के समीप आवागमन के लिए अवरुद्ध है और इसे खोलने की कार्रवाई जारी है। अन्य मार्गों को खोलने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश के चलते कुछ स्थानों में जलभराव की समस्या हुई है। देहरादून में आज बारिश की संभावना के चलते स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में शहर के पुनर्विकास और पार्किंग योजनाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर के 10 अतिव्यस्त जंक्शनों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे इसी माह शासन को वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। बैठक में मौबेवाला से राजपुर रोड और धूलकोट से कुआंवाला कॉरिडोर योजना, इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट और नए आढ़त बाजार निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं की हर गतिविधि की साप्ताहिक समीक्षा प्रशासन स्तर पर की जाए। शहर में ट्रैफिक सुधार के लिए जिलाधिकारी ने पुलिस और आरटीओ को सख्त प्रवर्तन के निर्देश दिए। अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों को सीज कर क्रेन से रेंजर्स ग्राउंड या काबुल हाउस ले जाने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए क्रेनों की संख्या भी दुगनी हो गई। साथ ही आईएसबीटी पर सवारी चढ़ाने और उतारने वाली अनाधिकृत वाहनों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड कैबिनेट ने भूतापीय बिजली बनाने का निर्णय लिया है। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, उत्तराखंड में भूतापीय बिजली उत्पादन का रास्ता साफ। दैनिक जागरण लिखता है, भूतापीय स्थल खोजने व क्षमता विकास को 3 करोड़ तक की सहायता। गुजरात के वडोदरा पुल हादसे से संबंधित समाचार को भी सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। अमर उजाला ने खबर का शीर्षक लिखा है, गुजरात में पुल टूटा, चलती गाड़ियां नदी में गिरी, एक परिवार के 6 समेत 13 लोगों की मौत। दैनिक जागरण लिखता है, वडोदरा में पुल ढहने से नदी में गिरे 7 वाहन, 13 की मौत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड सरकार ने ऊर्जा और पारदर्शिता के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए भूतापीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी। शासन ने राज्य के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 334 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति दी। कल से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए शासन प्रशासन तैयार। यात्रियों की सुविधा के लिए 27 जुलाई तक रेलवे हर दिन 5 मीला स्पेशल रेलगाड़ी चलाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 127 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी, अगले 2 दिनों में भी विभिन्न स्थानों पर वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान्ह 10:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।